इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं इस सत्र के हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर गिरीश पटेल जी को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं, साथ साथ इस सेशन के चेयरपर्सन एसपी भामू जी को भी मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। हम सभी करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। ब्रह्मा कुमारी बहनों से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे दोनों गेस्ट का गुलदस्ते और बैज से सम्मान करें। डॉक्टर गिरीश पटेल जी के परिचय में मैं कहना चाहूंगा, आप इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग काउंसलर एंड साइकाइट्रिस्ट हैं। आपने टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पदवी की डिग्री प्राप्त की है तथा पीएचडी इन साइकोथेरेपी कानपुर यूनिवर्सिटी से आपने ये डिग्री को प्राप्त किया है। आपने रॉयल सोसाइटी ऑफ हेल्थ लंदन से मेंटल हेल्थ में फेलोशिप का डिग्री भी प्राप्त किया है। आप मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कजाकिस्तान में विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं। आपने विश्व के अनेक देशों में भ्रमण किया है, जिसमें खास करके तांजानिया से त्रिनिदाद, केन्या से ब्रुनेई, अरूबिया से फिनलैंड और रशिया से वियतनाम तक देश शामिल हैं। आपको अनेक अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें विशेष रूप से रोटरी क्लब ऑफ कानपुर ने आपको रोटरी सर्विस अवार्ड दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन पोलैंड से पोलैंड ने सेंटेनरी मेडल आपको दिया है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन यूएसए ने आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि खार जिमखाना मुंबई द्वारा आपको दिया गया है। अनेक टीवी चैनल्स पर आपके अनेक शोज प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें अनेक चैनल जैसे सोनी, आज तक, सहारा, ये सब शामिल हैं, और इम्पोर्टेंट टीवी शोज लाइक गुड मॉर्निंग थाईलैंड, स्ट्रेट टॉक त्रिनिदाद एंड एन अवर विद एलिसन टांजानिया, ऐसे शोज पर भी आपको इनवाइट किया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई इंडिया हेल्दी इंडिया इज इज ब्रेन चाइल्ड विच इज रिकग्नाइज एज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन बाई इंडिया बुक ऑफ अवार्ड्स, इनको प्राप्त हुआ है। अगर मैं इस सेशन के टॉपिक के बारे में कहूं तो हमारा टॉपिक है लव द एक्सिलियर ऑफ लाइफ। जब ये टॉपिक सुना तो कबीर जी का दोहा याद आता है, जो बहुत फेमस है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, है ना, ढाई अक्षर, उसको इम्पोर्टेंस कितना दिया गया, जो पंडित हो सकता है। तो वैसे तो कहा जाता है कि शरीर के लिए भोजन की बहुत आवश्यकता है, लेकिन अगर भोजन में थोड़ा सा भी जहर मिला दे तो शरीर के लिए नुकसानकारक हो जाएगा। ऐसे ही मुझ आत्मा के लिए प्रेम एक निजी गुण जरूर है, लेकिन ये मेरी आवश्यकता भी है। लेकिन आजकल अगर देखें तो प्रेम में थोड़ी सी विकृति आ गई है, तो इस विकृति से कैसे बचा जाए और सही प्रेम क्या है, एक प्योर लव क्या होता है, इस पे प्रकाश डालने के लिए मैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें इस पर प्रकाश डालें। थैंक यू।
ओम शांति। अभी भी सभी नहीं बोल रहे, क्यों बोल नहीं बोल रहे मालूम है? मुझे आपकी मन की बात समझ में आ जाती है। कई सोच रहे हैं कि इनका कोई धर्म का शब्द है, हम क्यों बोले, हम तो अपना बोलेंगे, जय हनुमान। परंतु ओम का धर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कहते ओम के 108 अर्थ है, एक बहुत ही अच्छा अर्थ है, आपने भी कहीं ऑफिस में भी वो देखा होगा, एक पोस्टर होता है ओम वेलकम टू गॉड। ओम अर्थात कि भगवान का स्वागत हो। हाँ, तो परमात्मा हमारे बीच आए तो अच्छा है, क्योंकि प्यार में जो जहर मिला है ना वो भगवान ही दूर कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हाँ, तो भगवान हमारे बीच आए तो अच्छा है कि बुरा है, बोलो बोलो। हाँ, तो बोलना पड़ेगा ना, ओम शांति। अच्छा लगा ना। हाँ, बस ऐसे ही सचमुच रिस्पॉन्स करना है। हाँ, आइस ब्रेकिंग करें। आइस ब्रेकिंग क्या होता है, क्या होता है आइस ब्रेकिंग, नहीं सुना? अच्छा, क्या आइस को ब्रेक करना, ऐसे आपका आइस तो ब्रेक हो गया होगा शायद, तीसरा दिन है। कहते वक्ता और श्रोताओं के बीच में आइस होती है, फ्री नहीं होते है ना, थोड़ा सोचते कि क्या बोलेगा। तो आइस ब्रेकिंग मतलब कि वो जो बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना उसको हटा देना, ताकि हम अच्छे से कम्युनिकेशन कर सके। हमें ज्यादा लेक्चर नहीं देने वाला, हम अलग अलग एक्टिविटीज भी करेंगे। तो चलो आइस को ब्रेक करते, सभी खड़े हो जाओ, सर यहां आइए। हाँ, सिंपल ध्यान देखो। हाँ, मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूं, पहले से बता देता हूं। हाँ, यहां आइए। सिंपल सी बात है, थोड़ा ध्यान देना, आपको करना है। हाँ, मैं कर रहा हूं, आप देखना। हाँ, और फिर आपको एक एक पार्टनर बनाओ। सर मेरे पार्टनर है, एक एक पार्टनर बनाइए। हाँ, सामने सामने खड़े जाओ, ऐसे देखो, ऐसा करो, ऐसे ऐसे, समझ गए, मिल गए पार्टनर सबको। ओके, अभी देखो, अभी क्या करने, ध्यान दो। हाँ, एक से दस कैसे होना है, नहीं अटेंशन प्लीज। हाँ, ओके, वन, नहीं नहीं आप करो, वन तरफ, टू थ्री फोर, आप नहीं, आप देखो, ये मुश्किल है, इजी नहीं है, देखो पहले, याद रखना आपको बच्चा। हाँ, आपको मेमोराइज करना, ये हो गया, वन टू थ्री फोर हुआ अभी। हाँ, फिर है फाइव सिक्स, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, चलो करो अभी। तो आपने ध्यान दे दिया। हुआ? अच्छा, ओके ओके, थैंक यू, ओम शांति। किसका हुआ? ओके ओके, बस 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 बस, थैंक यू। किसका हुआ सही? सही हुआ, अच्छा, वेरी गुड। चलो उनके लिए ताली बजा दो, मैं बैठ सकते, बैठे। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ आइस ब्रेकिंग था, कोई बात नहीं, तो प्राइमरी स्कूल की बात है। हाँ, बच्चों को ऐसा कराते हैं कि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, है ना, उनको याद रहे कि क्या क्या किया। ओके, हाँ, आइस ब्रेक हो गया। हाँ, तो अभी आपको रिस्पॉन्स देना है। मैं छोटी छोटी बातें भी पूछूंगा, क्यों मालूम है? क्योंकि थोड़ी देर में मेरा आवाज तो मां की लोरी बन जाएगा, तो लोग सोने भी लगेंगे। तो भी जगाए कैसे उनको, बोल तो नहीं सकते, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। तो आप लोगों को कुछ बोलना है, यस नो जो भी। हाँ, सरल सी बातें होगी, परंतु तो जोर से बोलने का, ताकि जो सो गए वो जाग जाए, समझ गए ना। हा? और प्रतिक्रिया भी देनी है। ऐसे तो सीरियस टॉपिक है, ज्यादा ताली बजाने की बात नहीं है, फिर भी ताली बजा देने की। हाँ, थोड़ा भी अच्छा लगे तो ताली बजाने की, मेरी बात पसंद आए तो गर्दन हिलाने की, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये लोग समझ रहे, मुझे सुन रहे ना। कोई हंसने की बात हो तो जोर से हंसने का, हंसना आता है? आता है हंसना, सिद्ध करके बताओ। अच्छा, देखो आवाज, वेरी गुड, देखो आइस ब्रेक हो गया, नहीं तो लोग हंसते नहीं है। अच्छा, टॉपिक क्या है? टॉपिक लव, क्या पूरा है? टॉपिक है लव, द एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर क्या होता है? एलिक्सर नेक्टर, अच्छा, अमृत। और कहते एलिक्सर वह चीज है कि वह कोई ले ले तो कभी उसकी मृत्यु होगी ही नहीं, है ना, वह अमर हो जाएगा। हाँ, ऐसा तो किसी को मिला नहीं। लेकिन जीवन में सच्चा प्यार आप डेवलप करो तो भले ये शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा को सब याद रखेंगे। तो कह सकते हैं ना कि इसकी मृत्यु नहीं हुई, कम से कम 500,000 लोग भी आपको याद करें कि भी ऐसा कोई रेलवे में ऑफिसर था, है ना, जिसने हमको ये अच्छी मदद की, है ना, या तो कोई भी ट्रांसपोर्ट में, BST में ऐसा ही ऑफिसर था, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, तो क्या हो गया, हम अमर हो गए। तो सचमुच प्यार वह एलिक्सर है ना, लोग बहुत कुछ करते हैं अमर बनने के लिए, परंतु यहां पर हमें यह सबसे इंपॉर्टेंट है। कहिए ना, अपने मां बाप के नाम पर आप अस्पताल में कमरा खोल देते ना, लेकिन लोग जो पढ़ेगा उसको मालूम भी नहीं कि कौन था, इजंट इट। परंतु थोड़े 1,000-2,000 लोग आपको याद करे और वो मुश्किल नहीं है, और ये एलिक्सर से जीवन भी अच्छा हो जाएगा। हा? सिर्फ वही बात नहीं, ये करेंगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी ना। और सचमुच वह क्या है, प्यार है। जीवन क्या है इसको नहीं देखो, अभी आप जवाब दो, ये नहीं आप बोलो जीवन क्या है। बोलते ना लाइफ इज अ चैलेंज, सुना ना, लाइफ इज अ गेम। हाँ, इससे जीवन क्या है, जर्नी, वेरी गुड। आप ट्रांसपोर्ट में है तो अच्छी बात है। हाँ चलो ताली बजा दो ना, ट्रांसपोर्ट में है तो जर्नी, वेरी गुड। और जीवन क्या है, हाँ चुनौती है, और क्या है जीवन, हाँ हाँ एक एक खड़े जो जोर से बोलो, संघर्ष है, और देखो अभी तो टाइम नहीं है, हमारे वर्कशॉप में हम लोग कराते, मैं फुल डे का वर्कशॉप अटेंड करता हूं, उसमें कराते, और आप क्या जवाब देते हैं उससे मैं बोल सकता हूं कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। जो कहे ना कि लाइफ एक संघर्ष है, तो उसके जीवन में संघर्ष है अभी, है ना। जो कहे लाइफ इज लव, तो दोनों चीजें पॉसिबल है, या तो उसके जीवन में प्यार है या तो वह प्यार चाहता है, उसको प्यार मिल नहीं रहा है, समझ गए। अच्छा, तो ये सभी उत्तर अच्छे हैं, हमारे टॉपिक से संबंधित जो एक अच्छा सा उत्तर है कि लाइफ इज अ नॉवेल, कि जिसका पहला और अंतिम पेज गुम हो गया है, अब काम क्या है कि उसको ढूंढना, तभी तो कंप्लीट होगी ना। भी अभी है कि मुझे अच्छी सी किताब मिली, है ना, अगर उसका फर्स्ट और लास्ट पेज नहीं है तो ढूंढना पड़ेगा। तो लाइफ का भी ऐसा ही है। हाँ, और ये जो आज का विषय है वो जर्नी में कहीं ना कहीं आपको शायद ये उत्तर मिल जाएगा कि पहला और अंतिम पेज क्या है। आपने भी सुना होगा कि मैथ्स है जो, हाँ गणित किस पर डेवलप हुआ है, जोर से जवाब दो, इधर है वो भी तो उत्तर है, सोचने का नहीं है, जीरो पे डेवलप हुआ ना। कहते भी भारत ने जीरो की खोज की, पहले जीरो नहीं होता था तो बहुत प्रॉब्लम होते थे, तो अभी मैथ्स इजी हो गया। ऐसे ही रिलेशनशिप जो है, संबंध अच्छे बनाने हैं तो जिसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, है ना, तो संबंधों को अच्छा बना पाता है। और जीवन जो है वो किस पे डेवलप होता है, बढ़ो, लव पे, लाइफ डेवलप्स ऑन लव, और चीजों पे जीवन विकसित नहीं हो सकता है। जैसे भी नहीं, पौधे को हाँ सूर्य का प्रकाश नहीं मिले, हाँ सब कुछ करो, पानी डालो, खाद डालो, कि सूर्य अंधेरे में रख दो तो मर जाएगा। तो ऐसे ही लव इज दैट सनशाइन फॉर लाइफ, कि जिससे सारा जीवन ग्रो हो सकता है। बल्कि भी प्रॉब्लम सारा यही है, क्योंकि आत्मा को यह पता है कहेंगे अनादि काल से आत्मा की यह आवश्यकता है। जिन शरीर की आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान, तो ऐसे ही आत्मा की आवश्यकता है शांति, सुख, पावर और प्यार सबसे इंपॉर्टेंट। और जब इस विश्व की शुरुआत में आत्मा उस स्वरूप से ही प्यार का अनुभव कर रही थी, उन्हें पता था कि मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं यह शरीर नहीं हूं। परंतु धीरे धीरे, है ना, कोई चीज अगर दिखाई नहीं देती है तो व्यक्ति भूल जाएगा ना कि भी कोई व्यक्ति को, सपोज कि कोई व्यक्ति जब जन्मा तब उसकी आंखें थी, लेकिन 5 साल में कोई कारण से उसकी आंखें चली गई ना। फिर देखो अगर 40-50 साल के बाद उसको पूछो ना आपका चेहरा, शायद उसको याद नहीं होगा, क्योंकि विचार शुरू में देखा था लेकिन 50 साल तक उसने अपना चेहरा देखा ही नहीं। तो ऐसे ही, क्योंकि कई जन्म हमें वो भान ही नहीं रहता है कि मैं आत्मा हूं, तो इसलिए वह हम भूल जाते हैं। शरीर दिखाई देता है तो ये लगता है कि मैं यह शरीर हूं, फिर हम शरीर से ही प्यार को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और शरीर प्यार दे नहीं सकता है ना। मैं मनोचिकित्सक हूं, आप आके मुझे बोलो डॉक्टर साहब आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, मैंने आपके YouTube पे सारे वीडियो देखे, आप मेरा हार्ट का ऑपरेशन करो, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, हा मरना है कि नहीं? कि भी मानसिक तकलीफ है तो आई एम बेस्ट, लेकिन हार्ट का ऑपरेशन करना है तो आपको हार्ट के सर्जन के पास जाना पड़ेगा, मैं आपको ढूंढने में मदद कर सकता हूं, है ना। तो ऐसे ही, क्योंकि शरीर प्यार दे ही नहीं सकता है, और शरीर में प्यार ढूंढने लगे तो सारा जैसे दलदल में आदमी फंसता है ना, ऐसे हम फंसते ही गए। हाँ, आप सबको दलदल से निकलना है, निकलना है, ऐसे नहीं चलेगा। देखो हाँ, देखो मेरे बहुत पेशेंट है बॉम्बे में तो भी मैं छोड़ के आया हूं, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। हाँ क्या, ऐसा नहीं, देखो हाथ को ऐसे करो, नहीं ठहरो ठहरो ठहरो, हवा में जोरदार मुक्का मार रहे हैं, बाजू वाले को नहीं मारना, और जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, फिर टॉपिक अधूरा रह जाएगा। हाँ अच्छा, दलदल से निकलना है, अभी भी सब नहीं, यहां से तो आवाज ही नहीं आया, जोर से बोलो। हाँ अच्छा, जोरदार, हाँ, दलदल से निकलना है, वेरी गुड, देखो अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा। देखो सारे कैंपस में तो आवाज जाना चाहिए ना, ताकि हमारे जो सीनियर से उनको भी लगे कि सेशन चल रहा है ओके हाँ, देखो इंपॉर्टेंट चीज है। लव इज नथिंग, टू बी लव्ड इज समथिंग, इसे प्यार कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई हमें प्यार करे तो इट इज समथिंग, बट टू लव एंड टू बी लव्ड इज एवरीथिंग। अब बीच बीच में बंद कर दो लाइट, जैसा भी देखो रिकॉर्डिंग के, हाँ देखो, देखिए जैसा ठीक लगे, ओके ओके ओके, मैं बोलूंगा तो बहुत नहीं पढ़ाई दे, कोई बात नहीं, एक्चुअली तो जरूरत नहीं होती इसकी, लेकिन लोग बोलते हैं, है ना, अच्छे वक्ता को पीपीटी की जरूरत नहीं है। हाँ ये तो लोग बोलते हैं, अगर पीपीटी नहीं दिखाते तो आप अच्छे वक्ता नहीं है ओके तो हमें प्यार करना भी है, प्यार मिले भी, दोनों चीजें जब आएगी तब संपूर्णता होगी, और सही मायने में आप समझ जाएंगे। हाँ तो बस, हाँ थोड़ा देखो, एकदम तैयारी रखो। हाँ देखो, कमर को सीधी रख के बैठो, हाँ दोनों पैरों को जमीन पे रखो, हाँ आंखें बंद करो। हाँ ये सोचो कि अभी बस ये सेशन में 1 घंटे में दूसरे हमें सचमुच समझना है अच्छे से कि व्हाट इज रियल लव, वो अच्छा प्यार हम सचमुच पाएंगे। वो गीत सुना है ना आपने, देखो अभी वो गीत बजाएंगे थोड़ा सा, हाँ 2 लाइन सुनो।
प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम,
एक्चुअली सच्चा प्यार वो आंतरिक है, बाह्य नहीं है। क्योंकि देखो बाह्य जो भी चीजें है वो परिवर्तनशील है ना, बाह्य सब कुछ परिवर्तनशील है, भी शरीर है अभी जवान है फिर बूढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं, सब कुछ। किसी ने हंसी में कहा कि देखो कोई भी चीज पुरानी होती है तो काली होती है, सिर्फ बाल है जो पुराने होते तो फेद होते, तो सब कुछ परिवर्तनशील है। अगर इटर्नल प्यार चाहिए तो वह आंतरिक है कि जो सदा के लिए रह सकता है और कुछ नहीं रह सकता है। अभी से किसी का नाम नहीं देता हूं, एक बहुत अच्छा एक्टर है, किसी ने उनको पूछा कि आपने अपनी वाइफ से शादी की तो क्या अच्छा लगा था, उसने कहा कि पहली बार जब मैंने उनको पीछे से देखा ना तो बहुत सुंदर थी इसलिए मैंने शादी की। पता नहीं आगे चल के क्या होगा, परंतु ऐसा प्यार लंबा नहीं टिक सकता है। कोई भी एक्सटर्नल चीज को देख करके, न केवल फिजिकल, इवन किसकी डिग्री को देख के प्यार करो तो भी हो सकता है वो व्यक्ति बहुत क्रोधी निकले तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसे सचमुच जो है वह इंटरनल है, और जो रियल प्रेम है वह क्या होना चाहिए, स्पिरिट हार्ट एंड कैरेक्टर, ये तीन चीजें हैं वह बदली नहीं होगी, है ना। तो इसका कैरेक्टर आपको अच्छा लगे, हाँ तो भले व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाए वो कैरेक्टर उसका मेंटेन होने वाला है। तो बस ये बेसिक चीज है। एक्चुअली लव एसेंशियली नो इट इज अ स्पिरिचुअल फायर, वो आग है वो तो जलाती है, परंतु स्पिरिचुअल फायर हमें जीवन दान देता है। और बहुत सारी आप देखेंगे ना बीमारियां हैं कि जो इमोशन से ही होती है, हेंसेल कि जिनको फाउंडिंग फादर माना गया है, तनाव के बारे में उन्होंने अनुसंधान किए हैं, हाँ उन्होंने भी ये लिखा है कि इमोशनली जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो कैंसर भी हो सकता है। ऑलमोस्ट ऑल 95% डिजीज इमोशनली आप डिस्टर्ब होते तो होगा, और जो इमोशनल डिस्टर्बेंस आता है उसमें भले और भी चीजें, लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिला, और प्यार का जनो मतलब ही खत्म हो गया। हाँ जो आप लोग प्यार समझते हैं ना वो प्यार नहीं है, वो तो जो भाई जी ने बोला उसमें पॉइजन डाला है। सच्चा प्यार जो है वह तो शारीरिक तो है ही नहीं, वह जैसे कहा वह स्पिरिचुअल है। सच्चा प्यार है उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सच्चे प्यार में कोई डिमांड नहीं है। तो इसलिए जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूं कि इट इज समथिंग इंटरनल, और इस स्पिरिचुअल फायर को जगाना है। आप में भी कई लोग होंगे जो कहेंगे कि हम भगवान को नहीं मानते। देखो अभी अभी आपके अंदर 5 लाख न्यूट्रिनो प्रवेश कर रहे हैं। महात्मा गांधी में जो न्यूट्रिनो थे उसमें से 5000 हम सब अभी ब्रीथ कर रहे हैं। हाँ, कैसा लगता है? बोल गए डॉक्टर पागल हो गया, मेंटल हॉस्पिटल में भेजो। बट दिस इज साइंस। फिजिक्स के कोई प्रोफेसर को बोलो तो इट इज ट्रूथ। न्यूट्रिनोस को गॉस्ट पार्टिकल भी कहा, वो अभी तक मालूम नहीं था। आज से अगर 50-60 साल पहले, मुझे पता नहीं कब उसका इन्वेंशन हुआ, परंतु ये मालूम नहीं था कि तब भी वो थे। जब मालूम नहीं था तब भी वो थे कि नहीं थे? थे ना, परंतु साइंस को उसका पता नहीं था। तो ऐसे ही शायद आज भी हमारे पास वो 100% प्रूफ नहीं है कि मैं आत्मा हूं। ऑलमोस्ट 85-90% है। हाँ, परंतु जब साइंस प्रूव करेगा शायद बहुत देरी हो गई होगी। हाँ, आप ऊपर चले गए होंगे तो फिर उसका फायदा नहीं लिया। तो इसके कारण ये पक्का करो कि भी हमें कोई एक्सपीरियंस करना है। और आज ही मेरे साथ चलना, 11 बजे तक आपको एक्सपीरियंस करा दूंगा। द रियल स्पिरिचुअल जो लव है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्रीफाइस। हाँ, पढ़ने को नहीं आते कोई बात नहीं। ईगो को जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे ना तो आप सच्चा प्यार दे सकते हैं ना सच्चा प्यार ले सकते हैं। और ईगो क्या है? कहते इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो। है ना, आप ऑफिस में गए, है ना, आपके बॉस आपके सामने आए लेकिन उन्होंने स्माइल नहीं किया, और आपको हर्ट हुआ, तो ये ईगो है। है ना, ऑफिस में आपके बॉस मिले, आपने बोला गुड मॉर्निंग लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, है ना, तो ये आपका ईगो है, उनका नहीं। अभी टाइम नहीं, एक बहुत पावरफुल कहानी है इसके बारे में, लेकिन समय कम है, कि हमें पूरा पता नहीं है कि उन्होंने क्यों जवाब नहीं दिया, है ना, क्योंकि आपको पूरा उसका कारण मालूम नहीं है। एसेंस में चलो कहानी बता देता हूं, लंबी सी कहानी है, मैं आपको 2 लाइन में बताता हूं। ऐसे एक व्यक्ति था, वो डोरकीपर का काम करता था, वो बोलता था गुड मॉर्निंग लेकिन बॉस जवाब नहीं देता था। उसकी मृत्यु हो गई, फिर से किसको पूछा तो उसने कहा कि भी वो बहरे थे, उनको सुनाई देता ही नहीं था, तो बेचारा कैसे जवाब देगा। तो बेचारा बहुत उसको आत्मग्लानी हुई कि अरे मैं जीवन भर यहां 50 साल से काम करता हूं डोरकीपर का, और मैंने इसके बारे में कितनी गलत धारणाएं पाल ली। कारण क्या था कि मैं बोलता हूं गुड मॉर्निंग, बॉस जवाब नहीं देते हैं। हाँ, परंतु सच कारण मिल गया। तो ऐसे ही बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अंदर क्या है हमको मालूम नहीं। समझो बॉस आपसे अच्छे से बात नहीं करे, परंतु हो सकता है घर में पत्नी से झगड़ के आया है, तो मुश्किल है ना। तो इसलिए कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करो बस। और ईगो को मारना है, हाँ या ना? अभी थोड़े ही लोग बोल रहे हैं। सचमुच कुछ करो, है ना, और लेक्चर दे के ईगो नहीं मर सकता है। प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। समझो आप रोज एसी में सोते, थोड़े दिन देखो एसी के बगैर सोने का ट्राई करो। अभी केरला में हुआ होगा ना, कितने लोग होंगे जो शायद 24 घंटे एसी ऑन था, वो टेंट में रह रहे, तो तभी प्रॉब्लम होगा। तो आदत डालनी है ना, आपके पास बहुत अच्छा बेड है तो भी एक बार जमीन पे सो जाओ। खाना भी हमेशा डाइनिंग टेबल पे खा तो एक बार नीचे बैठ के खाओ, है ना, एक बार सिंपल कपड़े पहने भी बाहर निकलो, भले प्रेस नहीं भी किए, सिंपल से लोग क्या सोचेंगे, डोंट वरी। एक्चुअली हम क्या सोचते, अगर आपने विदाउट प्रेस किए कपड़े पहन के एक बार आप ऐसे निकले, ऑफिस नहीं जाना, नीचे भी आप आए दूध लेने के लिए और आपका ध्यान जा रहा है कपड़े को, इस प्रेस नहीं है प्रेस, तो समझ लेने का कि ईगो है। तो ऐसे बहुत कुछ करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लोग, ताकि सचमुच अहंकार मरेगा ना तब ही शांति मिल सकती है। ये देखो बहुत अच्छा है, ये ध्यान से सुनना, अभी हम और ज्यादा स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे कि सचमुच लव एलिक्सर ऑफ लाइफ कैसे है, कि जो आपको कहेंगे क्या करेगा, अमर बना देगा। क्या है, यू आर मेड बाय गॉड एंड फॉर गॉड अंटिल यू अंडरस्टैंड दैट लाइफ विल नेवर मेक सेंस। सुना, क्या सुना, कि यू आर मेड बाय गॉड एंड फॉर गॉड। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो गर्दन क्यों नहीं हिलाते, अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ा तो, है ना। भगवान ने हमको बनाया कि नहीं मालूम नहीं है, शायद इटर्नल भी कुछ हो सकता है, परंतु हम भगवान के लिए बने हैं वो 100% है। और बस ये आ गया ना, क्योंकि देहधारी कितना भी मैं बताऊं, समझो अभी आप लोगों को अच्छे से आप सुन रहे हैं, आप सोचेंगे नहीं ये तो करना है 100% करना है, आप ट्राई भी करेंगे तो भी वो शायद सामने वाला कहीं ना कहीं तो कुछ नुक्स निकाल ही देगा, isn't it? हां, श्री कृष्ण की भी सभी पत्नियां उनसे खुश नहीं थी, शायद वो स्टोरी है, रियलिटी है कि नहीं पता नहीं। तो पॉइंट हियर इज कि हमें भगवान के लिए मैं बना हूं, बस भगवान मेरा साथी है ना, वो पक्का करो तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, या प्लीज प्लीज कम कम ना, ज्यादा नहीं पूछना, अभी तो एंड में पूछ सकेंगे आप। अच्छा, वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट, एक्सलेंट एक्सलेंट, इस पर पूरा लेक्चर हो सकता है, ईगो पे एक घंटा अच्छे से समझा सकते हैं। मतलब ये ना, ईगो ऐसी चीज है कि जो क्या करती है कि स्वमान से और कुछ, देखो इससे आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा कि ईगो क्यों आता है, क्योंकि स्वमान नहीं है, सेल्फ एस्टीम जिसको कहते हैं ना, भी सच्चे अर्थ में स्वमान आ जाए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं और आत्मा में सब कुछ है, सबसे पहले तो मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं और मुझे अच्छा बनना है, परिवर्तन जरूर लाना है, वो विभिन्न तरीके से अगर आप में स्वमान आ गया तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। अभी प्रॉब्लम यहीं पर आता है कि स्वमान और अहंकार का भेद हम नहीं समझ पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसके शादी ब्याह में गए भी, उन्होंने अच्छे से आपका वेलकम नहीं किया, अगर आपका स्वमान अच्छा है तो यू विल नॉट फील एनीथिंग कि मैं अच्छा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, आई एम वेरी गुड। आप जाएंगे, हेलो कर देंगे, जो कुछ भी है करके आ जाएंगे, एक थोड़ा भी फील नहीं हुआ, आपको फील हुआ तो अहंकार है। चलो ये भी सच हो सकता है कि वो व्यक्ति ने आपको बुरा दिखाने के लिए ऐसा वर्ताव किया, ये मानते पॉसिबल है, लेकिन मुझे फील नहीं करना, क्योंकि ये जो सब है पॉलिटिक्स खेल के वही डिस्टर्ब हो रहा है भाई, 10 लोगों से अच्छा व्यवहार करो, 2 लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करो, जो उसने अपना मैथमेटिक्स लगाया हो तो वह ही अपनी शांति को भंग कर रहा है। और नहीं, मैं अच्छा हूं तो हूं ही ना अच्छा, तो बस ये भी आए ना तो सोचने का कि मेरा अहंकार है। इसीलिए कहा कि इट इज अ स्पिरिचुअल फायर, जो सारा पुरुषार्थ करना है इवन स्वमान को डेवलप करने का, वह है इनसाइड आउट। अंदर से हमें डेवलप होना है, अंदर से अच्छे गुणों को धारण करना है, है ना, अंदर से क्वालिटीज। भी सपोज अभी आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है कि भी अहंकार वाला कहेगा कि सब लोग को मेरे को रिस्पेक्ट देना है, लेकिन स्वमान वाला क्या सोचेगा कि शायद दो चार अगर मेरे को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो शायद कहीं तो मेरी कमी है, मुझे अपनी स्किल्स को अच्छा करना है, है ना, मेरी अपनी क्वालिटीज को अच्छा करना है, मुझे अपने कम्युनिकेशन को सुधारना है। तो दो चार हो सकते, समझो 100 में से 5 लोग हो सकते कि इवन इफ यू आर परफेक्ट, 100 में से 2-4 लोग बोलेंगे अच्छा नहीं है, परंतु एटलीस्ट 95 या 97 तो सोचने चाहिए कि ही इज अ गुड पर्सन। तो वहां डेवलप करो तो आप में अच्छे गुण आएंगे और साथ साथ में बुरा भी नहीं लगेगा, और अहंकार में आएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर कुछ कर ही नहीं सकेंगे। देखो फिर से एक बताता हूं, आप सबने सुना होगा ये क्योंकि टॉपिक है तो बोलता हूं, है ना, राजेश खन्ना जिसको फर्स्ट सुपरस्टार मानते हैं इन अपने बॉलीवुड का, लेकिन जब अमिताभ बच्चन आए तो उनको पसंद नहीं था। इवन एक बार तो उन्होंने बोल भी दिया कैसे बहुत लोग आते और जाते हैं, कुछ नहीं होगा, कहते कि काफी समय ना, उन्होंने साथ में भी काम किया बहुत सारे पिक्चरों में, वो बड़े थे तो उसको नीचा दिखाते थे, ध्यान नहीं देंगे, कोऑपरेशन नहीं देंगे, है ना, तो ये सब ईगो है। इसका भी परिणाम क्या हुआ, ये हकीकत है, कहते अमिताभ बच्चन भी फेमस हो गए और एक बार दोनों खड़े थे तो अमिताभ बच्चन के पास बहुत सारे फैन चले गए, उनके पास एक दो ही गए, तो उनको इतना बुरा लगा कि घर जाके खूब शराब पी, समझे। सो दिस इज, अगर पहले से किसी ने उनको समझाया होता और ये पुरुषार्थ उन्होंने किया होता, एक तो रिस्पेक्ट देते एक बात थी, और दूसरा कि उस समय भी ये डिस्क्रिप हो सकता है तो उनको ऐसा बुरा नहीं लगता, फिर शराब पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, नाउ इट्स पावरफुल। सब तैयार है अभी, हाँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलते नहीं है मतलब, अरे क्या बता रहे, अच्छा ओके देखो नहीं नहीं अभी पावर, दो चीजें पावरफुल है बहुत, हाँ, क्या है कि टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज टू फॉरगिव एवरीथिंग एंड देन देयर कैन बी लव। हाँ थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, पहले बोले एक तो बोलते ईगो को मारो, अभी दूसरा बोलते फॉरगिव करो, कई लोग बोलते सारी दुनिया को माफ कर दूंगा, अपन तो ये बंदे को माफ नहीं करूंगा। तो तब तक आपको प्यार नहीं मिल सकता है। अभी कैसे करने का, देखो अब मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी कराना चाहता हूं कि जिसमें सारे नेगेटिव इमोशंस को भगाना है। रेडी है सब, सारे इमोशंस खत्म हो जाएंगे, एक बार खड़े हो जाओ, फिर से पार्टनर बनाओ, चलो अच्छा ये भाई भाइयों को, सर यहां आइए, भाई भाइयों को बनाएंगे, बहनें बहनों को बनाएगी, हाँ पार्टनर पार्टनर, हाँ देखो हाथ मिलाओ पार्टनर से, हेलो, हाँ ओके ओके, रुको रुको रुको, हाँ नहीं रुको, कुछ करने का है, करने का है, करने का है भाई जी। देखो अभी दो इमोशंस है कि जो प्रॉब्लम करते, शांति प्रेम सुख जो भी प्राप्त करना है, एक है कि आपने किसी से बुरा व्यवहार किया और आपको वह टेंशन है कि समझो आपने अपने बेटे पे गुस्सा कर दिया, और आप दुखी हो रहे कि अरे मैंने गलत कर दिया, बेटे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और दूसरा है कि किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, somebody has broken your trust, है ना, तो वह भी बहुत बड़ी चीज है जो अगले जन्म में भी हम लेके जा सकते हैं। अब इसको पूरी तरह से दूर करना है। हाँ, तो देखो दो एक्टिविटी अच्छे से करना है। देखो अभी चेहरा देखो अपने पार्टनर का ना, देखो चेहरा और ये सोचो यह वही व्यक्ति है जिसको मैंने दुख दिया है, आपने उस व्यक्ति को दुख दिया है और अब उससे माफी मांगनी है। मैं मांगूंगा, सब मुझे फॉलो करेंगे, प्रॉमिस, तब तक छोड़ूंगा नहीं है, मैं करूंगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, जितना जल्दी करेंगे अच्छा है, ओके। हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। हाँ करो करो करो, जल्दी 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 जल्दी, तो नहीं कर, शर्म आती है कि हो गया, अच्छा चलो बैठ सकते, थैंक यू जी, थैंक्स। तो हाँ नहीं, अभी तो झूठ मुटका किया, परंतु जैसे ही ये मॉर्निंग का सत्र पूरा हो, करीब 12:30-1 बजे पूरा होगा ना, जैसे ही आपका मॉर्निंग का सत्र पूरा हो, सबके पास मोबाइल है ना, मोबाइल निकाल के फोन करना, हो सकता है व्यक्ति यहीं है तो प्रैक्टिकली जाके बोलना, अगर यहां पर नहीं है तो मोबाइल से फोन करना और सही ऐसा नहीं मुझे माफ कर दो, क्या कारण है क्यों आपने क्या किया था और आपको क्या फीलिंग है, इमोशनली बताना, 99% आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, 0.1% चांस है कि कोई उसका गलत उपयोग करे। तो डिटैच हो जाने का, हमने पैसा थोड़ी दिया, आप किसको 1 करोड़ दो तो वापस नहीं देगा ये तो हमने अपना अच्छा भाव दिखाया है, अगर तुमको नहीं तो तुम्हारे पास रखो, समझ गए, लेकिन 99.9% अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको। अभी दूसरी चीज और मुश्किल है, वो क्या, माफ करना। और क्यों माफ करना है, उस पर आप उपकार नहीं कर रहे, जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, जिसने आपका ट्रस्ट है वो खत्म कर दिया है, उसको माफ करके आप उस पर उपकार नहीं कर रहे, अपने आप पर उपकार कर रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो इवेंट है ना आज भी आपको डिस्टर्ब कर रही है, जितना भी हो, भी महीने में एक बार याद आ जाती है, रोज याद आती है, साल में एक बार याद आती है, तो आप डिस्टर्ब होते हैं, आपका सुख चैन छीन जाता है, तो इसलिए माफ करना है कि वो जो बुरा प्रभाव आप पर पड़ रहा है ना, और कॉस्मिक एनर्जी उसका रिटर्न देंगी, आपको टेंशन नहीं लेना, लीगली कुछ करना है तो करो, जैसे जेसिका लाल मर्डर केस भी, उसकी बहन ने सारे भारत को जगा दिया, तो दैट वाज ओके, लेकिन वो रिपीट करना वो बुरा है, बार बार रिपीट करते रहो, है ना, और वह जब तक आप माफ नहीं करेंगे नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं माफ करो और भूल जाओ, नहीं सॉरी, कई लोग कहते हैं भूल जाओ और फिर माफ करो, परंतु एक्चुअली पहले माफ करो तब भूल सकेंगे, नहीं तो याद आएगा ही आएगा ही, ठीक है, नहीं माफ करो तो भूलेंगे, और अनकंडीशनल भगवान को सौंप दो कि तुमको जो करना है करो, ठीक है, अच्छा कमर को सीधी रख के बैठो, हाँ अभी आंखें बंद करो, ऐसे व्यक्ति को याद करो जिसने आपके जीवन में दुख दिया है, जिसने आपका विश्वासघात किया है, उसको पूरी तरह से माफ करो, देखो वो जानता नहीं था कि वो क्या कर रहा था, 100% बिना कोई शर्त के उसे मैं माफ कर, और माफ करना मेरे ही लिए फायदेमंद है, तभी मैं उसको भूल पाऊंगा, तभी मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। इसलिए बिना कोई शर्त के मैं उन्हें माफ कर देता हूं। धीरे से आंखें खोलो। किया माफ? किसने किसने किया? चलो मैं ताली बजाता हूं, इतने सारे माफ कर दिए। अभी फिर से, अभी तो थोड़ा ही किया। 8 सप्ताह तक रोज माफ करो, अगर वो बड़ा इवेंट है तो। 8 सप्ताह तक करते रहेंगे ना, तब वह खत्म होगा। अच्छा हाँ, अब देखो ये है ना, थोड़ा डीप है कि एक तो है पावर ऑफ लव और दूसरा है पावर फॉर लव, है ना। सबको देखो, पावर के लिए प्यार होता है ना, कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, है ना, मैं जीएम बन जाऊं रेलवे में, या तो मैं मिनिस्टर बन जाऊं। ये क्या है? पावर ऑफ लव और पावर ऑफ लव और पावर फॉर लव। लव में पावर है, परंतु हमें लव के लिए पावर नहीं क्रिएट करना। या तो ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूं तो मैं अच्छा हूं, उल्टा वो गलत है, क्योंकि वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। प्यार की शक्ति जिसको कहेंगे, बेनी, प्यार की शक्ति जबरदस्त है, परंतु शक्ति के लिए प्यार अच्छा है या बुरा है? शक्ति के लिए जो प्यार है वह बुरा है, समझ गए ना। और कहते हैं कि जीवन में बहुत सारी चीजें जो एक्सटर्नली अट्रैक्ट करेगी, परंतु जो दिल को अट्रैक्ट करे ना वो करो, तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। सचमुच में भी, और ना जो आप तो अभी वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम भी ऐसा कुछ सोचो कि भी क्या करने से मेरे दिल को अच्छा लगता है, कि भी चलो गरीब बच्चों को पढ़ाने से आपके दिल को अच्छा लगता है। आप सच नहीं मानेंगे, पेपर में भी आया था, ही वॉज अ कैप्टन इन, वो मतलब प्लेन चलाते थे, पायलट थे, लेकिन उनको लगा कि भी गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो जो भी फ्री टाइम मिलता था अपने घर में आस पड़ोस के गरीब बच्चों को बुला के पढ़ाने लगे, तो उनको और अच्छा लगने लगा। सच मानो वो 500 बच्चों को पढ़ाने लगे और लोग भी ज्वाइंट हो गए उनके साथ। उन्होंने कहा कि मेरी जॉब से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे इन बच्चों को पढ़ाने से मिल रहा है। अभी तो नहीं, आपके दिल को जो अच्छा लगता है ऐसा भी कुछ जरूर लाइफ में परस्यू करो। अभी ये सारा क्यों बताया? हाँ, इतनी देर जो बताया, भाव क्या था कि माइंड को कंडीशन करना है, आदत डालनी है। क्या आदत डालनी है? अनकंडीशनल प्यार देने की आदत डालनी है। ही मैं लोगों को अनकंडीशनल प्यार दे पाऊं। देखो अब ये भी है, लव फॉर गॉड, परमात्मा के लिए प्यार, और परमात्मा भी हमें प्यार करे, है ना। वो दोनों चीजें जरूरी है। और परमात्मा के लिए का जो प्यार है ना, वो कोई एक्सटर्नल चीज से बदलना नहीं चाहिए। आज कई लोग कहते हैं कि भगवान को पहले तो मैं बहुत मानती थी, अभी भगवान को नहीं मानती। पूछते क्यों? तो कहते मेरा भाई बीमार था और मर गया, भगवान ने उसको ठीक नहीं किया, तभी मैं भगवान को कभी नहीं मानूंगी, ऐसे बहुत कुछ। तो ये तो एक्सटर्नल है, ये पूरा अच्छे से समझ लो, भगवान कुछ भी नहीं करता है। तो आप बोलेंगे क्या करता है, क्यों माने उसको? हाँ, भगवान को क्यों माने? आपने भी कहीं पढ़ा होगा, कहते हैं कि भगवान से मैंने शक्ति मांगी, भगवान ने शक्ति नहीं दी, भगवान ने मुझे समस्याएं दी ताकि मेरी शक्ति बढ़े। समझ रहे? कहते भगवान से मैंने प्यार मांगा, भगवान ने मुझे प्यार नहीं दिया, भगवान ने एक गरीब लोग दिए ताकि उनकी सेवा करके मैं प्यार प्राप्त कर सकूं. सो दिस इज परमात्मा सचमुच प्यार देता है, ऐसा फिजिकली आके कुछ करता है. भगवान क्या करता है, हमें बुद्धि देता है, हमें शक्ति देता है, हमें ज्ञान देता है. और आप अच्छे से करो तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा उसमें, कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा और वो बात हो जाएगी आपकी. हाँ, पर बोले एक्सटर्नल चीजें चेंज भी हो तो भी ये नहीं पूछो वाई मी लॉर्ड. होता है ना समस्या, देखते भगवान मुझे ही क्यों दुख दिया. जब डायबिटीज होता है ना, हमारे पास पेशेंट आते बोलते मुझे ही क्यों डायबिटीज हुआ, पड़ोसी को क्यों नहीं हुआ. क्या मैं अकेला खाली था कि भगवान ने मेरे को डायबिटीज दिया, पड़ोसी को नहीं दिया. एक तो भगवान नहीं देता है, और जो भी इसी उसको आप सही रूप से उपयोग करो तो यू विल प्रोग्रेस फर्दर. ये नहीं कहो वाई मी लॉर्ड, क्या कहो, हाँ ट्राई मी लॉर्ड. हाँ बोलो जोर से, वाई मी लॉर्ड, वाई मी लॉर्ड, जोर से बोलो. क्या ट्राई मी लॉर्ड, मेरी देखो मेरी में कितनी शक्ति है ना. एक बहन को, मैंने कई बार उदाहरण सुनाया है, एक बहन को वो मंगोल मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं ना, ऐसा बच्चा हुआ. वो 7-8 साल का हुआ तो लोगों ने पूछा देखो आप इतने अच्छे हैं, इतना पैसा है आपके पास, फिर भी भगवान ने आपको ऐसा मंद बुद्धि का बच्चा दे दिया. दूसरे का नहीं नहीं मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता है, मुझे मालूम है, भगवान को भी मालूम था कि मैं बच्चे को अच्छे से पाल सकती हूं इसीलिए मेरे पास भेजा. तो अगर कोई कहे भी कि भगवान ने मुझे समस्या भेजी, भेजता नहीं है, लेकिन अगर भेजी तो उनको मालूम था कि आप उसको फेस कर सकते हो, आप में वह क्षमता है. तो बोले सारी दुनिया अलग हो जाए परंतु भगवान के प्रति का प्यार क्या होगा कि नहीं होगा, अलग नहीं होना चाहिए. अच्छा हाँ, वे ना भगवान को साथी बनाना एक्चुअली, और साथी होते हैं ना, सबसे अच्छा है भगवान को साथी बना दो. देखो ये भी ट्रांसपोर्ट की बात है. रशिया में जब कम्युनिस्ट राज पूरा हुआ ना, तो जब कम्युनिस्ट राज था ना तब कोई भी प्राइवेट टैक्सी नहीं होती थी, सभी टैक्सी या गवर्नमेंट की होती थी. और उसके कई फायदे थे. उसमें क्या होता था, अगर उस समय समझो 1980 में आप गए हो रशिया और आप मॉस्को से टैक्सी करो, बोलो सेंट पीटर्सबर्ग जाना है, तो क्या करेगा मालूम है, टैक्सी वाला कंट्रोल टावर में फोन करेगा कि भाई मैं यहां से मॉस्को से एक पैसेंजर को मैंने उठाया है, सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा हूं. तो वो कंट्रोल टावर उसको बोलता था रात चौराहे पे दूसरा भी एक आदमी खड़ा है उसको भी पिकअप कर लेना, तो बहुत फायदा होता था उसमें. और आगे जाएगा तो भी फोन करेगा कि सर मैं यहां तक पहुंच गया हूं, ऐसा ऐसा है. तब ये नेट नहीं था ना इतना, हाँ आप तो गूगल मैप्स है. तो मैं यहां तक पहुंचा हूं तो भी कंट्रोल टावर वाला बोलता था कि भी इसमें बहुत ट्रैफिक है, दूसरे रास्ते से जाना तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे. तो कहते कि बार बार वो कंट्रोल टावर से कम्युनिकेशन करने के बहुत फायदे थे. तो बस ऐसा सिंपल सा काम, हाँ भगवान एक शक्ति है और उसे बार बार बात करो, है ना. जैसे आप घर से ऑफिस जाते हैं तो बात करो कि शिव बाबा मैं ऑफिस में जा रहा हूं, तो एक तो बाबा आपको शांति देगा, नहीं तो याद भी करेगा वो भूल गए वो ले लो. कई बार होता है ना गाड़ी की चाबी भूल गए, नीचे जाके वापस आते अरे चाबी भूल गया. तो परमात्मा आपको कुछ याद करा देगा. बीच तक भी पहुंचो तभी भी बोलो कि बाबा मैं यहां रास्ते तक पहुंचा हूं. हाँ आपको सच उदाहरण, बंबई से जो लोग हैं ना, पिछले साल पता है बंबई में बहुत बारिश आई, हाँ, और क्या हुआ था मालूम है? सवेरे कुछ भी नहीं था, मुझे एक पेशेंट को देखने के लिए सिटी में जाना था, साउथ बॉम्बे में, मैं बोरीवली में रहता हूं, मसीना हॉस्पिटल है सिटी में। हम सवेरे निकले, एकदम सूखा था, कुछ भी नहीं था, भी अंधेरे तक पहुंचे तो काफी बारिश हुई, तो भी हमको लगा तो क्या होगा। दादर तक पहुंचे और बारिश हुई, तो सचमुच यही बात मैंने की कि बस एक मिनट रिलैक्स होके मैंने बोला कि भी बाबा क्या करे। तो एक बस प्रेरणा मिलती, भगवान बोलता नहीं है, अंदर में कुछ तो गट फीलिंग बोलते हैं ना, ऐसी कुछ फीलिंग आई कि आज नहीं जाना है, वापस चलो। मैंने ड्राइवर को कहा नहीं वापस चलो, उसने बोला सर यहां तो पहुंचे इतनी सी बारिश, आप डरपोक है। मैंने कहा अभी जो भी है वापस जाएंगे, क्या है अभी एक पेशेंट के लिए तो जाना है, चलो वापस। सच मानो अगर हमने 5 मिनट भी लेट किया तो हम कहीं ना कहीं तो अटकते। बोरीवली पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम था ना, तो बोरीवली पहुंचते पहुंचते कितने कहीं कहीं से जाना पड़ा अंत में तो बोरीवली में, तो कि सारे रास्ते में पानी 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 है, अल्टीमेटली एक रास्ता मिला कि हम प्रॉपरली पहुंच गए। सो दिस ये जो कम्युनिकेशन है, और थोड़ा करेंगे ना आपको आ जाएगा। आप कहेंगे अरे आपका इतने सालों से आप मेडिटेशन करते, बस सच्चे दिल से करने लगो, 5 दिन भी आप मेडिटेशन सच्चे दिल से करो, आपको वो भगवान से कम्युनिकेशन होने लगेगा। एंड दैट कैन हैपन इन डिफरेंट वे। अच्छा देखो अभी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, रियल लव, उसमें इसके प्रश्न मिले अभी तक, हु एम आई, आप कौन है, आ गया, बोलो हु एम आई एम अ सोल। दूसरा हाउ एम आई, आप कैसे हो, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। वेयर एम आई, आप कहां है, उंगली से बताओ, आप कहां है, बताओ बताओ। देखो अभी भी हार्ट में बता रहे हैं, शायद अच्छे से क्लास नहीं हुआ आपका, समझना ठीक से, ब्रेन ही तो है ना कि जिसको यूज कर सकता है। अच्छा तो ये मिल जाए ना उत्तर, then also you can experience real spirituality. Once you experience real spirituality, there is real love also. बस और करना क्या है पता है, सब कुछ सौंप देना है भगवान को। चलो दूसरा एक गीत है, कमर को सीधी रख के बैठो, हाँ सुनो, हाँ बस थोड़ा 10 सेकेंड ही सुनेंगे हम। सौंप दिया कि नहीं सौंपा? सौंप दिया। अच्छा ऐसे करो, देखो भगवान को सौंप रहे, सब कुछ भगवान तुझे दे दिया है बस। हाँ डरना नहीं है, भगवान आपको वापस दे देगा। फिर बोलेगा कि ट्रस्टी बन के इसको संभालो। अच्छा बस ये आना चाहिए, दैट वो एसेंस अगर सचमुच आ गया कि आए आप कैसे दिखते हैं, वो दैट स्पार्क ऑफ लाइट, वो सो डीप इंटरनल वो आ जाए ना, सब कुछ आ जाएगा। और अल्टीमेटली जैसे मैंने भी बताया कि वो अभ्यास करना है, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे नहीं होगा। चलो इसे भी पहले हम थोड़ा सा अभ्यास भी कर लेते हैं, एक सिंपल सा, मैं अभी तक भी कर रहे हैं ना मेडिटेशन के, मैंने अलग अलग कॉमेंट्रीज डेवलप की है। अभी आपको एक नया सा कराता हूं, एक नई सी कॉमेंट्री है ये। हाँ मेरे साथ साथ करना, देखो अच्छा हो, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इसमें बात सारी ऐसी है कि संडे का दिन है, आपको एक पहाड़ी पर घूमने के लिए जाना है, आप तैयारी करके पहाड़ी पर घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और जो हो सब इसके अंदर है, ओके। हाँ कमर को सीधी रख के बैठो, हाँ दोनों पैरों को जमीन पे थोड़ी दूरी पे रखना है, हाथों को ऐसे मोड़ लेना है, देखो दिखता है ना, जितना आवश्यक फिर भी एक प्रॉपर पोजीशन हेल्प्स। कंधे को भी ढीला कर देना है, गर्दन को सीधी रखनी है। राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से भी किया जाता है, परंतु क्योंकि आप में से अधिकतर पहली बार करते होंगे तो चाहे तो आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, बस अपनी सांस की गति को ही फील करो। सांस ले रहे हैं, सांस बाहर आ रहा है, बस सांस की गति को फील करिए। जैसा भी है, नथिंग गुड और बैड, जैसे ही आप सांस की गति को फील करते हैं विचारों की गति भी शांत हो जाती है। अब आप विचारों को मोड़ सकते हैं, एक वीडियो फिल्म की तरह पूरा चित्र निर्माण करें कि आज रविवार का दिन है, आपने सोचा है कि नजदीक में ही एक छोटी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर घूमने के लिए सवेरे सवेरे जाएंगे, थोड़ा अच्छे से पैदल भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, नेचर के साथ भी मैं रहूंगा। ऐसे आप कुछ छोटी छोटी तैयारी करके सवेरे सवेरे निकलते हैं, जैसे ही उस पहाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं वो सारे नजारे का आनंद ले रहे हैं, है ना, भले मिट्टी लग रही है कहीं हाथों में पैरों में तो भी अच्छा है कि हम नेचर के साथ है, पांच एलिमेंट्स के साथ है। आज हम कंक्रीट में ही जीते हैं, मिट्टी हमको कभी लगती नहीं, वो अच्छा है कि भे मैं वास्तव में कुदरत के पांच तत्वों के करीब आया हूं। पौधों को भी आप हाथ लगाते हैं, पौधों को हाथ लगाते उसको भी आप फील करते हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कोई चीज थोड़ी जगमगा रही है, आसपास में बहुत मिट्टी लगी है, आपको लगता है कि न जाने क्या जगमगा रहा है, तो आप चीज को उठाते हैं, आसपास की मिट्टी को दूर करते हैं, तो पाते हैं कि बहुत ही कीमती हीरा है। इसी से आपको याद आ जाता है कि मैं आत्मा भी बहुत ही कीमती हीरा हूं, उस पर यह देह भान की मिट्टी लगी हुई है। इस देह भान की मिट्टी को समाप्त करना है। पूरा देह भान छोड़ रहे कि मैं आंख नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आंखों द्वारा देख रहा हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं सिर्फ कानों के द्वारा सुन रहा हूं, मैं चमड़ी नहीं हूं, चमड़ी के द्वारा तो स्पर्श की फीलिंग होती है, परंतु इन सबसे परे मैं एक जगमगाती ज्योत हूं। मस्तिष्क के मध्य में चित्र निर्माण करे कि मैं वह जगमगाती ज्योत हूं, मैं अमूल्य हीरा हूं। जैसे ही भाव निर्माण होता है शांति का अनुभव होता है। न्यारेपन का भाव हो रहा है, और एकदम रिलैक्स होकर के आप और ऊपर चढ़ते हो और ऊपर चढ़ रहे हो और ऊपर जाते हो तो एक जगह पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, वहां अच्छा सा पत्थर है, आपको लगता है कि इस पर मैं बैठ जाऊं, वहां बैठ करके आप सूर्य को देख रहे हैं, वह कोमल किरणें सूर्य की आपको बहुत अच्छा फील कराती है, एक वार्म फीलिंग हो रही है, जो सवेरे सवेरे सूर्य की किरणों से होती है। आप और अच्छा लगता है, जैसे शक्ति आने लगी, परमात्मा भी ज्ञान सूर्य है। जैसे यह सूर्य के सामने बैठ करके मुझे अच्छा लग रहा है, मैं रोज ज्ञान सूर्य के सामने बैठूंगा, रोज परमात्मा को याद करूंगा। शांति के सागर है परमपिता परमात्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। पवित्रता के सागर है शिव पिता, मैं आत्मा पवित्र बन रही हूं। प्रेम के सागर है, एक बूंद नहीं यह सारा सागर ही मेरा है, बस मुझे उनसे संबंध जुटाना है। भगवान मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे प्रेरणा दे सकते हैं, भगवान की पूरी शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। अब यहां से उठ के और मैं आगे बढ़ता हूं और ऊपर जाता हूं। रास्ते में कांटे भी आते हैं, कुछ कुछ जानवर भी आते हैं, परंतु मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूं। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन पथ पर बल कांटे आए, समस्या आए, परंतु अपनी मंजिल की ओर आगे ही बढ़ना है। अब एकदम वहां पर ऊपर पहुंच गए हैं तो आप देखते हैं कि सामने थोड़ी दूरी पर और एक पहाड़ी है। आप जिस पहाड़ी पर है वहां अच्छे अच्छे फल नहीं है, लेकिन सामने वाली पहाड़ी पर बहुत अच्छे फल है, वहां जानवर भी एक दूसरे से मुस्कुरा रहे हैं। आपको लगता है कि आप भी उस पहाड़ी पर चले जाए, आपको विचार आता है कि जंप लगा के मैं उस पहाड़ी पर चला जाऊं, परंतु देखते हैं कि बीच में थोड़ा ज्यादा ही डिस्टेंस है, आप इतनी जंप नहीं लगा पाएंगे। जीवन भी ऐसा ही है। आज हम जो है और जो हम बनना चाहते हैं वो दोनों के बीच में एक खाई है, एक फासला है। आपको मन में आता है कि बस मुझे वैसा बनना है, दिव्य गुणों से भरपूर, सच्चा प्यार मेरे में आ जाए, अहंकार को मैं समाप्त कर दूं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखूं। परंतु ऐसा आपसे हो नहीं रहा है, वह शक्ति नहीं है आप में। लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं वहां सिल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप परमात्मा को पुकारते हैं कि हे भगवान, आप ही मुझे उठा के उस पहाड़ी पर ले जाओ। दिल से भगवान को बुलाइए कि आप ही मेरे में परिवर्तन लाइए, मुझे दिव्य गुणों से भरपूर कर दीजिए। एक फरिश्ता सामने प्रकट होता है, वह दिव्य फरिश्ता आपको अपने हाथों में आराम से उठा लेता है, आप एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं और आप उस पहाड़ी पर जा रहे हैं। सामने की पहाड़ी पर आप पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस यहां तो सब फल ही फल है, जिसे फल आप हाथ में लेते हैं वह रसदार फल है, पूरा उससे जूस निकलता है, एकदम आप अपने आत्मा और शरीर दोनों को संतुष्ट कर देते हैं। आपको अनुभव हो गया है कि परमात्मा की मदद का कितना बड़ा फायदा है। सदैव मैं परमात्मा से मदद प्राप्त करूंगा। ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं, इसी विचारों में खो जाते हैं। गीत के शब्दों में हम एकाग्र हो जाएंगे। एक गीत बजेगा और उस गीत के शब्दों में हम पूरे एकाग्र हो जाएंगे। साधना के पथ पर मैं आगे बढ़ूंगा, से रिलैक्स, ऊर्जावान होकर के आप वापस नीचे आते हैं और बस उमंग उत्साह से अपने घर पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, जैसे जीवन में परिवर्तन आ गया, मेरा कायाकल्प हो गया। धीरे से आंखें खोलिए।
अगर इस सेशन को मैं तीन वाक्यों में समराइज करूं तो कहा जाएगा, लव इज स्पिरिचुअल, लव इज अनकंडीशनल। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई, लव गॉड, परमात्मा को प्यार करो, क्योंकि उसका प्यार हमको दूसरों से सच्चा प्यार करना सिखाता है। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गिरीश भाई ने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को स्पष्ट किया और आप सबके बिहाफ पर मैं उनको अश्योर भी करता हूं कि हम लोग अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर गिरीश भाई साहब। अब इस सत्र के हमारे चेयरपर्सन एसबी भामूजी को मैं उनका परिचय देना चाहूंगा। एसबी भामूजी, आप प्रिंसिपल चीफ टेलीकॉम सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। आप 1982 बैच के आईईएस ऑफिसर हैं। आपने रेलवेज में विभिन्न पदों पर काम किया है और रेलवे बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का पद भी संभाला है। विशेष तौर पर वेस्टर्न रीजन रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन के कार्य के लिए आपको रेलवे मिनिस्टर्स अवार्ड से नवाजा भी गया है। अगर मैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कहूं तो आप IISc बेंगलुरु से बेंगलुरु के अलुमनी हैं और आपने MBA भी किया है। हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई के फाइनलाइजेशन के लिए जो डेलीगेशन यहां से जापान गया था, आप उसके लीडिंग मेंबर रहे हैं। गवर्नमेंट द्वारा आपको विभिन्न मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए अनेक देश जैसे कि USA, इटली में भी भेजा गया है। मैं भामूजी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके ऐसे वास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके इंस्पिरेशंस हम सबसे शेयर करें। ओवर टू भामूजी।
थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। इतने अच्छे रिलैक्स्ड माहौल के बाद में शायद एक और लेक्चर सुनना इतना कंफर्टेबल ना लगे। लास्ट में हमने इतना मधुर और इतना लयबद्ध गीत सुना। इनफैक्ट मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहूंगा। पिछली बार जब यहां पे मैं आया था ऐसे ही कोर्स करने के लिए, तो इसी भजन की CD मैं साथ में लेके गया था, जिसको मैं अक्सर सुबह के समय सुनता हूं। वो मेरा बहुत छोटा ग्रैंडसन करीब 7-8 महीने की उम्र से ही जो है, जब मुझे वो भजन सुनता देखता तो आके वो मेरी गोदी में बैठ जाता। भाई बच्चे को भी इतना सूदिंग लगता है। और अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, करीब 1.5 साल का, तो कहीं भी होता भजन चलता दौड़ के आता है, बाबा भजन 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 सुनेंगे बैठ के जो है। तो किसी भी आप ह्यूमन ट्रेट कि आप अगर जड़ में जाएंगे, मूल में जाएंगे, अभी डॉक्टर गिरीश जी ने लव प्यार के ऊपर इतना अच्छा हम लोगों के सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में पेश किया, उस किसी भी ऐसे खास गुण की तह में जाएंगे तो उसकी तह में मेरा मानना है वो है ईश्वर में प्रोफाउंड बिलीफ, आस्था। जब आप एक बार आस्था रख लेते हैं, आस्था में होते हैं, आप ये मानते हैं कि भाई आप एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं, अगर आप किसी पद को आप संभाल रहे हैं तो ये भूमिका आपको दी है, उससे हट के थोड़ा जब सोचते हैं, या ऐसे ही परिवार की जिम्मेदारी है उसको यही समझते हैं भाई जिम्मेदारी आपको दी गई, कुछ भी अगर आप हट के समझते हैं तो आप चीजों से इतना ज्यादा अटैच नहीं होते और निष्पक्ष भाव से उनको आप देख पाते हैं। इनफैक्ट पब्लिक लाइफ में हम लोग इतने ज्यादा स्टाफ ऑफिसर्स विभिन्न पदों के लोगों से डील करते हैं और अक्सर ये कार्य की डिमांड रहती है कि जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए आपको कठोर भी बनना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसकी मूल में, जड़ में एक निष्पक्ष और एक प्यार का भाव रखेंगे, सबसे समानता का भाव रखेंगे, आपका जो ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, वो सबकी सहायता, सबको सपोर्ट करने वाला होगा, तो निश्चित तौर से पब्लिक लाइफ में भी आपको सफलता हासिल होगी। ऐसा नहीं है कि आप ये सब जो है एक थ्योरेटिकल वर्ड्स हैं, बट प्रैक्टिकली ये चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं। डॉक्टर गिरीश भाई ने इतना सरलता से इस चीज को समझाया। इनफैक्ट ये आमतौर से डॉक्टर्स जो है बीमारी को दूर करने के लिए कड़वी दवाई पिलाते हैं, बट आपने तो अमृत पिलाया जो है प्यार की शिक्षा देने के लिए। डॉक्टर गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है, बहुत कुछ हम आपसे सीखते हैं। इनफैक्ट जब मुझे कहा भाई मोतीलाल जी ने अभी आज सुबह के कुछ मैं भी बोलूं, मैंने इनको सबसे पहले यही कहा कि भाई मेरा तो जो रेडियो है वो अभी रिसीव मोड के अंदर है, मैं सुन रहा हूं जो है, अभी सीख रहा हूं जो है, और थोड़ा बहुत जो ठीक है आप कहते हैं तो जो मेरा संस्मरण है थोड़ा बहुत बताता हूं मैं। लेकिन वास्तव में प्यार लोगों को जुड़ता है, जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है, और जब दिल जुड़ते हैं तभी कोई भी कार्य, कोई भी मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट संभव हो पाता है। मैं अगर रेलवे के एग्जाम्पल से ही आपको कुछ थोड़ा बहुत बताऊं, तो आजकल इतना सब न्यूज और इतने सब अखबार में खबरें आती हैं, सबको सब पता होता है, व्हाट्सएप भी सब चलता होता है, तो उसके माध्यम से भी खबरें आती हैं, कुछ बढ़ के कुछ सही कुछ गलत। लेकिन ये बात सही है कि पिछले कुछ साल पहले तक रेलवे सुर्खियों में रहा, या मैं ये कहूं कि काफी प्रॉब्लम के दौर से गुजरा, जिसमें कि कुछ एक्सीडेंट्स की संख्या ज्यादा ही रही जो है। इस बीच में करीब एक साल से ज्यादा पहले हमारे नए मुखिया श्री अश्विनी लोहानी जी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, वो आए जो है, उन्होंने क्या किया, ऐसा क्या उन्होंने मैजिक किया कि ये एक्सीडेंट की परफॉर्मेंस सडनली क्वांटम जंप, यानी इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया उसमें कि लोएस्ट स्तर पे और करीब 1/3 रह गई है। और ऐसे उन्होंने क्या मैजिक किया, उनका सिर्फ एक ही मैजिक है जो कहते हैं वो, माय एम्प्लॉइज फर्स्ट, मैं अपने स्टाफ की, कर्मचारियों की देखभाल पहले करूंगा। कस्टमर तो अपने आप की उसकी देखभाल हो जाएगी, अगर मैं एम्प्लॉइज की देखभाल करूंगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगा, उनकी प्रॉब्लम्स का मैं निपटारा करूंगा सिस्टमेटिकली, क्या ऐसे रूल्स, क्या ऐसे रेगुलेशंस हैं जिनको कि हम दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो पत्थर की लकीर बन गए हैं, जो चीजें पिछले 50 साल से भी ऐसे नियम बने थे वो भी एम्प्लॉइज से सजेशन लेके सभी नीचे से ऊपर तक और पूरी एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने उनका उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उसी का एक नतीजा है। ऐसा नहीं है कि सीनियर ऑफिसर्स या रेलवे बोर्ड के मेंबर्स या प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर्स ये इसमें कुछ मैजिक कर देते हैं, ये परफॉर्मेंस तो सभी एम्प्लॉइज की ही होती है जो है। मैं अपना अगर अपना पर्सनल आपको बताऊं एक्सपीरियंस जो है, आज से करीब 30 साल पहले ये जो लाइन है आप जिस पे अभी आप ट्रेवल करते हैं अहमदाबाद तक, दिल्ली से रिवाड़ी, जयपुर, अजमेर, आबू रोड, अहमदाबाद, ये पूरी की पूरी लाइन मिचकेस होती थी जो है। इनफैक्ट राजस्थान में शायद ही कोई ब्रॉडगेज नेटवर्क था इस साइड में, उधर कोटा की तरफ से था, बट राजस्थान प्रिडोमिनेंटली जो है मिचकेस होता था। और अचानक सरकार ने सोचा कि नहीं, हमें यूनिगेज पॉलिसी को फॉलो करना है, और टारगेट्स सडनली आपसे कह दिया जाए कि अगर आप 5 किलो वजन उठा सकते हैं, और नहीं आप अब आपको 50 उठाना है, तो एक के बस की तो बात होती नहीं है। तो टीम बिल्डिंग और उस टीम को कैरी फॉरवर्ड करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं उस समय, ये 88-89 की बात है, जयपुर में जस्ट प्रमोट होके डिप्टी चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर के पद पर आया था। मेरा जिम्मेदारी थी कि रिवाड़ी से जयपुर होते हुए अजमेर तक पूरा ब्रॉडगेज कन्वर्शन टारगेट के हिसाब से पूरा करना है, एक साल में पूरा करना है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी समस्या देखिए कि गाड़ियां चल रही हैं, उसको रोक के आपको मीटरगेज से ब्रॉडगेज करना है, तो समझ सकते हैं कि ज्यादा समय गाड़ी लाइन को नहीं उखाड़ सकते हैं। तो टीम बिल्डिंग से लेके और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन तक बहुत बड़े चैलेंजेस हमने फील किए, और मैंने देखा कि आपको हर एक जो स्टाफ या ऑफिसर्स मिलता है उसको आपकी बहुत ज्यादा च्वाइस भी नहीं होती है। ऐसा भी नहीं कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो बहुत च्वाइस आपको स्टाफ मिलेगा, स्टाफ है, ऑफिसर्स है, आपको उन्हीं को ग्रूम करके बिल्डअप करना है। और कई ऐसे मुझे नाम भी याद हैं जहां बताने को आवश्यक नहीं है, कई ऐसे स्टाफ और एक दो ऑफिसर्स भी थे जिन्हें मुझे बताया गया सर ये तो आपको डुबो देंगे, ये काम आपका होते भी नहीं होगा। मैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये टीम को आगे बढ़ा के चलेंगे। और उनको मैंने बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से एनकरेज करके, पैट करके, और जिसे कहते हैं ना स्टिक एंड कैरेट, लेकिन निष्पक्ष भाव से आगे बढ़ाया, तो एक प्रोजेक्ट हमारी बिल्कुल टाइमली पूरी हो पाई जो है। और इनफैक्ट एक दो ऐसे मुकाम भी आए, जैसे मुझसे जो मेरे कंट्रोलिंग मेरा ऑफिसर है, एक सिस्टम होता है रेलवे में जैसे एनुअल रिपोर्ट्स जाने का, तो एक दो अधिकारी हमारे जो कि कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट बड़े साहब की नजरों में आते हैं कि भाई वो सीआर गई तो हमने तो अच्छी लिखी, अरे भाई ये तो तुम्हारा बेकार है, तुमने अच्छी कैसे लिखी, नहीं नहीं इसको बदलो। हमने कहा साहब छोड़ दीजिए, आदमी से काम लेना, कैसे काम लेना, एक स्टाफ एम्प्लाई को ट्रस्ट होना चाहिए अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर पे। और आंखों की शर्म सबसे बड़ी बात यह है, सीआर खराब मैं नहीं करता हूं किसी के, अगर आप छोड़ दीजिए रिजल्ट मिलना चाहिए अच्छा जो है। और इतने टर्न अराउंड, इस तरह से मैं कहता था अपनी हर असाइनमेंट पे कि अगर मैं एक भी ऑफिसर या स्टाफ को टर्न अराउंड कर सकता हूं, जो पहले से अच्छा कर रहा तो कर ही रहा है, लेकिन जो अच्छा नहीं कर रहा उसको ऊपर लेके आना। ऐसा होता है कई बार कुछ स्टाफ में ऑफिसर्स में लेबलिंग हो जाती है, तो ये फलानी चीज में बेकार है, इसको आपको नहीं लगाना है, आपको इस किस्म का काम उसने किया ही नहीं है, लेकिन जब तक आप जिम्मेदारी उसको नहीं देंगे तो कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसी तरह से जो है एक ये कई बार ऐसे मुकाम आते हैं जबकि आपको काम के लिए कई बार डांटना ही पड़ता है, लेकिन डांटने का भी एक तरीका होता है। ये मैं जब रेलवे बोर्ड में था, हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर थे एडिशनल मेंबर, उनसे सीखा। मैं बैठा हुआ था उनके पास में, कोई उनके हमारे कुलीग ऑफिसर जूनियर ऑफिसर आए, किसी बात में डांटा, अच्छे से डांटा कि तुमने ये काम नहीं किया। तो उसके जाने के बाद मैं हंस दिए, बोले अच्छे डांटा ना मैंने, अच्छे से डांटा ना मैंने। उनके चेहरे पर क्रोध के भाव नहीं थे, एक डांटना एक काम के लिए कहना कि भाई ये करें आप जो है अपनी बात है, लेकिन गुस्सा करना और उस बात को मन में बिठाना तो वो गलत बात है। तो जब वो मन के अंदर तह में प्यार रखेंगे तो अपने आप जो आपका स्टाफ है वो भी उसको सही समझेगा। अभी जो कह रहे हैं वो एक खास मकसद के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट एक बार मेरे साथ खास हुआ, जब आप फैसले लेते हैं तो पब्लिक से भी डीलिंग रहती है, जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग विभाग है, आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो आपको फैसले लेने होते हैं कि ये काम इतने समय में पूरा होना है तो कौन सूटेबल है और कौन सूटेबल नहीं है। तो कोई नई कंस्ट्रक्टिंग पार्टी थी, मैं उस समय किसी असाइनमेंट में था, तो मैंने देखा कि इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, छोटे मोटे काम की, ये काम बड़ा है, इसको हम नहीं दे सकते हैं। तो लॉजिक पूरा सेट रहता है, उसके हिसाब से पूरा कमेटी ने, इसका मैं खुद एक मेंबर था, मैं रिकमेंड किया नहीं जो नेक्स्ट है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, और ये जो भलाई लोवेस्ट है लेकिन इसका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, इसको हम ये काम नहीं सौंप सकते। अब वो एक परसेप्शन रहता है गवर्नमेंट की तरफ जो है, एक यूजुअल तरीके से उसने क्या किया, सारे हिंदुस्तान में उसने कंप्लेंट का लेटर भेज दिया, यानी नीचे जनप्रतिनिधि से लेके और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक। कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी ने सोचा कि भाई मेरे खिलाफ भेदभाव किया, मुझे दिया नहीं गया। उसके कुछ ही महीने बाद में कोई और छोटा काम था जो कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, और उस काम के लिए इस पार्टी ने, ये दिस पार्टी जो कि पहले बाईपास किया था, पहले फिर लोएस्ट था, और कुछ और पार्टी भी थी, और इस समय जो कमेटी थी वो मुझसे लोअर लेवल की थी और मुझे बल्कि उसको एक्सेप्ट करना था। तो अब वो जो हमारे नीचे जूनियर ऑफिसर हैं कमेटी में हैं, आउट ऑफ रिगार्ड फॉर मी जस्ट सलाह लेने आए कि सर क्या करें, ये तो फरापाती आदमी है, शिकायत की थी आपकी। मैंने पूछा भाई ये जो कंडीशंस आपकी हैं इस वर्क को करने की, क्या ये काम को पूरा कर सकता है? कि हाँ साहब ये काम तो इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकता है। उन्हें फिर आप पूछिए मत आपसे, आप अपने मन की बात कीजिए, जो सही है वो कीजिए। एक आदमी अगर मीट कर रहा है तो वो उस बात को मत जाइए कि उसने किसी के खिलाफ कंप्लेंट किया है, और उसको वो जो टेंडर था कॉन्ट्रैक्ट था वो अवार्ड किया गया। अब ये जो आदमी था ये अंदर से कितना शर्मिंदा हुआ, एक दिन मेरे पास में आया हाथ जोड़ के, वो कह रहा सर मैं आपको समझा नहीं, तो आप इतना निष्पक्ष भाव से काम करते डिसीजन करते हैं, एंड देट वॉज ए टर्न अराउंड फॉर द पर्सन कि उसने वो काम पूरा किया, और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो भी एक बड़ा कंट्रेक्टर बन गया। मेरा तात्पर्य ये एग्जाम्पल देने का ये है कि चाहे आपके एम्प्लॉयज हों, चाहे आप पब्लिक डीलिंग में लोगों से डील करते हों, जब उनसे तह में प्यार रखते हैं, एक निष्पक्ष भाव रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा, सेटिस्फेक्शन होगा, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आजकल जैसा माहौल चल रहा है इस देश के अंदर, बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिसमें क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर खराब होना और हैट्रेड, बहुत सारी चीजें इस तरह की सुनने में ज्यादा आती हैं, शायद होती इतनी ना हो। और ये प्रॉब्लम खाली हिंदुस्तान की नहीं है, वर्ल्ड ओवर बिकॉज ऑफ द कंज्यूमरिज्म। आजकल सब कंज्यूमर कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, सबको लग्जरी की आदत लग गई है, तो चाहे इतना वो डिजर्व ना करते हो लेकिन वो डिजायर हर आदमी करता है। तो ये जब इतना डिफरेंस आ जाता है एक्सपेक्टेशन में और जो वो डिजर्व करता है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं क्राइम को जन्म देता है। लेकिन अब जिस तरह से ये संस्था ब्रह्म कुमारी इतना बड़ा कार्य कर रही है, लोगों को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाके अवेयरनेस कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, प्योरिटी इन थिंकिंग, व्हाट इज द प्रोफाउंड ट्रूथ, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, इन सब चीजों को अवगत कराता है। तो इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में एक आंदोलन शुरू हुआ है जिसका नाम है एक्ट्स, 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस। 7 बिलियन, 700 करोड़ अच्छे कर्म, 700 करोड़ परोपकार के कर्म। ये 700 करोड़ की संख्या शायद कुछ साल पहले संसार की पॉपुलेशन इतनी रही होगी, इस समय थोड़ी बढ़ गई है, करीब 746 करोड़ है। तो अगर हर व्यक्ति एक अच्छा कर्म भी करे, वो सोचे मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं, किसी की केयर कर रहा हूं, कोई गरीब व्यक्ति की सहायता कर रहा हूं, किसी बच्चा जो अनपढ़ है उसको पढ़ा रहा हूं, या मैं किसी को सही दिशा दे रहा हूं, सबसे बड़ा परोपकार तो किसी को सही ज्ञान देना, उसको सही ज्ञान में लगाने का। अगर हर एक व्यक्ति करेगा तो कितने अच्छे कर्म, तो वी विल क्रिएट ए ऑरा ऑफ गुड डीड्स, 700 करोड़ गुड डीड्स इन द वर्ल्ड। और बजाय कि हम लोग ये व्हाट्सएप से शेयर करते रहें अलतू फालतू के वीडियो और बैड न्यूज, अगर ये हम एक मुहिम, ये हम एक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, तो मेरा ये मानना है कि ये हम सबको लौट के हमारे पास ही आने वाला है। वो आपने एक मूवी देखी होगी हिंदी की, जय हो, देखी आप लोगों ने, सलमान खान की मूवी जय जय हो, जिसमें वो कहता है कि भाई आप किसी के लिए अच्छा करें और उसकी रिटर्न में उसको बोलें थैंक यू मत बोलिए, उसको बोलिए कि आप अच्छा कार्य कीजिए और 3 और अच्छे लोगों को सेम काम कार्य कीजिए, उनको बोले आगे और 3 और अच्छा करें, इस तरह से कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी। ऐसे ही आप, ये आंदोलन है, ये YouTube पे आप देख सकते हैं, इसका वीडियो अवेलेबल है, 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, और इसका हिस्सा बने और जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन इस संसार को और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करने में हम खुद खुशहाल हों, उसके लिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। सबसे पहले जैसे ही ब्रह्म कुमारी के इसमें आप घुसते हैं, इस परिसर के अंदर रिसेप्शन के सामने ठीक कोने में मेरी एक स्लोगन पर नजर पड़ी, जो कि मुझे लगता है बड़ा एप्ट स्लोगन है, और आपका जो मोटो है ब्रह्म कुमारी का, और कहना चाहिए जो हम सबका मोटो है, जीवन में हमें चाहिए क्या, खुशी। तो खुशी, खुशी, खुश रहना और खुशी देना ऐसे ही है जैसे दुआ देना और दुआ लेना। तो मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी सीख है, इस सीख को हम सब लोग लेके जाएं। और आज डॉक्टर गिरीश ने भी हमें इसी डायरेक्शन में, खुश रहने के लिए, खुश रहना है तो प्यार करें, खुश रहने के लिए कहा कि आप खुश रहते हैं तो एक किस्म से आप दूसरे को दुआ दे रहे हैं जो है, और अगर आप दूसरे को खुशी दे रहे हैं अच्छा कार्य करके, गुडनेस करके, तो वो दुआ आपको मिल रही है जो है। तो दुआ लेना और दुआ देना दोनों में आप दोनों का हिस्सा बने। और ये जो सीख है ब्रह्म कुमारी की, यहां से लेके जाएं, हम स्वयं लेके जाएं। इस सद्भावना के साथ मैं अपनी स्पीच एंड करता हूं।
एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज मोस्ट वैल्यूएबल। मैं भामू जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने बहुत सुंदर शब्दों में हमें गुड विशेस और अपने अनुभव शेयर किए हैं। अब हमारे बीच में बनारस से राजू भाई जी प्रेजेंट हैं, वो हमारे लिए गीत लाए हैं, गीत के बोल हैं, गीत के बोल हैं, जिंदगी प्यार का गीत है। और इसी शब्दों के साथ हम लोग मेडिटेशन भी करेंगे, और भाई गीत गाए उससे पहले एक सूचना है।